ओम ओम ओम। विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी का प्रसंग चल रहा है। पहले प्रकरण में अभ्यास के लिए आठवां श्लोक। यमात्मा परानंदः परप्रेमास्पदं यतः मानभूवं हि भूयासम् इति प्रेमात्मनिच्छते तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नैवं मन्यार्थमात्मनि अतस्तत् परमं तेन परमानन्दतात्मनः इत्थं सच्चित्परानन्द आत्मा युक्त्या तथाविधम् परं ब्रह्म तयोश्चैक्यम् श्रुत्यन्तेषूपदिश्यते अभानेन परं प्रेमा भानेन विषये स्प्रिहा अतो भान्यप्याभातासौ परमानन्दतात्मनः अध्यत्रीवर्गमध्यस्थ पुत्राध्ययनशब्दवत् भानेऽप्यभानं भानस्य प्रतिबन्धेन युज्यते प्रतिबन्धोऽस्ति भातीति व्यवहारार्हवस्तुनि तं निरस्य विरुद्धस्य तस्योत्पादनमुच्यते। तो अभी तक के प्रसंग से यह निश्चय हुआ ज्ञान एक है, ज्ञान दो नहीं हो सकते। तो ज्ञान तीसरा भी नहीं हो सकता। ज्ञान एक के अलावा दूसरा तीसरा वन एंड हाफ भी नहीं हो सकता है, सवा भी नहीं हो सकता है। ज्ञान एक है। ज्ञान के बारे में दूसरी बात न उदेति न अस्तम एति। ज्ञान का जन्म नहीं होता, ज्ञान पैदाइश नहीं, ज्ञान पैदा नहीं होता। सिर फोड़ लो तो पैदा नहीं होगा, नाक रगड़ो तो पैदा नहीं। ज्ञान पैदा नहीं होता। ज्ञान के बारे में तीसरी बात है ज्ञान नाश नहीं होता है, न उदेति न अस्तम एति। ज्ञान मरता नहीं है। ज्ञान छुप जाता है ये दूसरी बात है, लेकिन मरता नहीं है, नष्ट नहीं होता है। नोदेति नास्तम येति इस वाक्य से पदार्थों में होने वाले जो छह भाव विकार हैं वो छह के छह भाव विकार ज्ञान में लागू नहीं होता। न विपरिणमते न वर्धते, ज्ञान बढ़ेगा कि नहीं, शरीर जिस तरह बढ़ता है उसी तरह ज्ञान भी बढ़ता है कि नहीं, संसार के पदार्थों में वृद्धि संभव है लेकिन ज्ञान बढ़ता नहीं है। चाहे जितनी वेदांत सुन लो ज्ञान मोटाता नहीं है। ज्ञान मोटाने वाला नहीं हो, बढ़ता नहीं है का मतलब मोटाएगा नहीं, बढ़ेगा नहीं ज्ञान। शब्द अनेक प्रकार के प्रयोग कर दिया जाता है व्यवहार में, ज्ञान की वृद्धि हुई कह दिया जाता है लेकिन ज्ञान बढ़ता नहीं है। न अपक्षीयते, ज्ञान घटता भी नहीं, ज्ञान बढ़ता भी नहीं ज्ञान घटता भी नहीं। वेदांत सुनना कम किया तो ज्ञान घट गया, वेदांत सुनना आरंभ किया तो ज्ञान बढ़ गया, ऐसा नहीं है। वृद्धि क्षय ज्ञान में नहीं होगा। तो ज्ञान बदलेगा कि नहीं, विपरिणमते, ज्ञान में बदलाव आएगा कि नहीं। पदार्थों में बदलाव आता है, वस्तुओं में बदलाव आता है। आपके केस में बदलाव आया कि नहीं बोलो भक्तो, आपके सिर का केस पहले काला था अब कैसा हुआ है? हुआ किसी का तो होता ही नहीं, मरते दिन भी काला ही रहता है, काला लगाते हैं इसलिए। ज्ञान में बदलाव नहीं आता है, बारह साल पहले प्रेमपुरी आश्रम में ही ये चश्मा नंबर चेक करके लगाया था, अभी तक वही नंबर है, वही फ्रेम है, हमने फ्रेम भी बदला नहीं नंबर भी बदला नहीं, चेक करा रहे हैं लेकिन अब की बार जो चेक कराया तो नंबर घट गया। तो आंख का नंबर घटना बढ़ना हो सकता है लेकिन ज्ञान घटता बढ़ता नहीं बदलता भी नहीं। नंबर बदल गया बोलते हैं ना तो ज्ञान बदल जाएगा कि नहीं, ज्ञान बदल जाएगा कि नहीं, नहीं बदलेगा। ये सातवें श्लोक में ज्ञान के बारे में ये सारी बात निश्चय कर लेना। नोदेति नास्तम एति एकः, ज्ञान एक है ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान नष्ट नहीं होता, उत्पन्न और नष्ट नहीं होता है का अभिप्राय बीच के जो चार भाव विकार हैं वो भी इसमें लागू नहीं होते। वर्धते, विपरिणमते, अपक्षयते ये भाव भी लागू नहीं होगा। ज्ञान के बारे में चौथी बात ये निश्चय कर लेना, संवित ज्ञान स्वयं प्रभ। ज्ञान ऐसा है कौन जानता है, ज्ञान एक है ये कौन जानता है, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता ये कौन जानता है, ज्ञान के द्वारा ज्ञान जाने जाएगा, ज्ञान नष्ट नहीं होता है ये कौन जानेगा, ज्ञान में षड्भाव विकार नहीं है, ज्ञान एक है ये बात कोई दूसरे ज्ञान से भी सिद्ध नहीं होगा, ये बात किसी आत्मा से सिद्ध नहीं होगा। आप उत्तर दे सकते थे, ज्ञान ऐसा है ये बात आत्मा के द्वारा जाना जाएगा, ऐसा उत्तर दे सकते थे। लेकिन ये उत्तर गलत होता, इसलिए विद्यारण्य मुनि जी ने कह दिया कि ज्ञान स्वयं प्रभा। बस इन सारी बातों को सिद्ध करने के लिए ज्ञान को किसी और की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा माने स्वयं सिद्ध है, ज्ञान ऐसे होने में ज्ञान ही प्रमाण है, ज्ञान के अलावा दूसरा प्रमाण नहीं हो सकता। तो ये ज्ञान के बारे में, संबित के बारे में आप इतना निश्चय कर लेना। अब ऐसा जो ज्ञान है, विद्यारण्य मुनि जी कहते हैं ऐसा जो ज्ञान है ये ज्ञान इयम आत्मा। बस अब आपको आत्मदर्शन हो गया कि नहीं, यही आत्मदर्शन। वेदांत आत्मावारे द्रष्टव्य जो कहता है आत्मा का दर्शन करना चाहिए, तो आत्मा का दर्शन कैसे करोगे बोलो। ये ही आत्मा, ये निश्चय ही आत्मदर्शन है। बस आत्मदर्शन का इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम कोई और वस्तु, आत्मा कोई और वस्तु, ज्ञान कोई और वस्तु, और आत्मा को दिखाने वाला कोई और व्यक्ति, ऐसा नहीं है। इयम या इयम शब्द से जिस संबित के बारे में, जिस ज्ञान के बारे में अभी तक चर्चा हुई और निश्चय हुआ, संबित एका संबित नोदेति न अस्तम एति संबित स्वयं प्रभा, इस तरह संबित के बारे में जो कुछ भी कहा है, ऐसा जो संबित है वो संबित क्या है, इयम एव आत्मा, यही तुम हो। बस ऐसा संबित ही तुम्हारा स्वरूप है। संवित में हड्डी नहीं है, संवित में मांस नहीं है, संवित में रक्त नहीं है, संवित में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ट्राइग्लिसराइड नहीं है, संवित में कुछ नहीं है। संवित में यदि है तो संवित में नित्यता है, संवित में यदि है तो स्वयं प्रभा है, प्रकाशता है, स्वयं प्रकाश रूपता है, इयम एव आत्मा। तो आपको आत्मा के बारे में निश्चय करना है तो किस रूप में निश्चय करोगे? संवित के रूप में। ज्ञान है इसका मतलब क्या है? मैं हूं। ज्ञान है इसका मतलब क्या है? मैं हूं। फूल यदि जाना गया तो किसके द्वारा जाना गया? ज्ञान के द्वारा जाना गया कि तुम्हारे द्वारा जाना गया? तुम ये नहीं कह सकते हो कि मैंने ज्ञान के द्वारा फूल को जाना, ये नहीं कह सकते। यदि तुम ये कहोगे तो बीच में ज्ञान दलाली लेने आ जाएगा, मांगेगा कि नहीं। तुम यदि कहो मैंने ज्ञान के द्वारा फूल को जाना तो ज्ञान कहेगा मेरे द्वारा ज्ञान जाना तो कमीशन दो, कहेगा वो, क्योंकि तुमने जाना। बस ज्ञान द्वारा जाना गया मतलब तुमने जाना, तुम्हारे द्वारा जाना गया। तुम्हें ज्ञान के पास जाकर पूछने की जरूरत नहीं है कि हे ज्ञान तूने फूल को जाना कि नहीं। क्योंकि ज्ञान अलग तुम अलग होते तब तो पूछना पड़ता। तुम यहां से घर वापस जाओगे, घर जाते ही कोई आया था घर में मुझे मिलने के लिए, पूछना पड़ेगा कि नहीं? किसी का फोन आया था, पूछना पड़ेगा कि नहीं? तो यहां किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ज्ञान के द्वारा जाना गया मतलब तुम्हारे द्वारा जाना गया, तुम्हारे द्वारा जाना गया मतलब ज्ञान के द्वारा जाना गया। तुम अलग, ज्ञान अलग नहीं है। इयम आत्मा, इसके अलावा आत्मदर्शन का और कोई स्वरूप नहीं है, अब भक्त लोग भक्ति सिद्धांत में, वैष्णव लोग भगवत दर्शन का कोई और रूप बताते हो तो भले ही बतावें, तुमको अलग करके, परमात्मा को अलग करके, और तुमको ये कहेंगे कि ये परमात्मा का रूप है, इसका दर्शन कर लो। भले ही वो कर ले, वेदांत ऐसा नहीं करता। इयम आत्मा, ये ज्ञान ही आत्मा है। शरीर में आत्मा किस रूप में है? शरीर में तुम किस रूप में हो? बोलो। ज्ञान के रूप में है, तो पशु के शरीर में पशु की आत्मा किस रूप में है? ज्ञान के रूप में है। चींटी के शरीर में चींटी की आत्मा किस रूप में है? ज्ञान के रूप में है। आत्मा ही ज्ञान है, इसलिए संसार में कोई भी प्राणी अज्ञानी नहीं है। ज्ञान उसका स्वरूप है तो अज्ञानी कैसे होगा भाई? है? बुद्धि के घटबड़ क्या हो सकता है? ज्ञान में घटबड़ नहीं होता, ज्ञान में घटबड़ नहीं होता है। बुद्धि में गड़बड़ हो सकता है, ज्ञान में गड़बड़ नहीं। और बुद्धि को ज्ञान नहीं मान लेना, बुद्धि तो अलग चीज है, जानकारी को ज्ञान नहीं बोल लेना। इन्फॉर्मेशन तो बुद्धि के माध्यम से होने वाला है, लेकिन बुद्धि को जो इन्फॉर्मेशन होगा वो तो तुम्हारे द्वारा ही होगा। तुम्हारी अनुपस्थिति में बुद्धि में कोई इन्फॉर्मेशन ता नहीं होगी। तो ये महात्मा ज्ञान ही आत्मा है, ये पक्का। दुनिया को तुम जानो चाहे न जानो, कहां क्या है, कौन कैसा है, ये तुम जानो चाहे न जानो, क्योंकि ये बुद्धि का विषय है। समझे कि नहीं? कहां क्या है, कौन कैसा है, ये तो बुद्धि का विषय है। ये तुम जानो चाहे न जानो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जहां तुम हो, तुम जैसा हो वैसा तुम जान सकते हो, उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। समझे कि मैं हूं, ये बात तो मूर्ख से मूर्ख भी जानेगा, इसके लिए बुद्धि की क्या जरूरत है? स्वयं प्रभा विद्वान होने की जरूरत है मैं हूं, ये निश्चय करने के लिए। अहम 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 मैं ये अनुभूति के लिए तो विद्वान होने की जरूरत है। अपने अस्तित्व का बोध तो चींटी को भी है कि नहीं? अपने होने पने का अनुभव तो चींटी को भी है, सभी को है, क्योंकि वो बोध स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है, वो तो होता ही रहेगा उसको। आत्मा के बारे में और भी ये समझ लेना, अभी तक के प्रसंगों से आत्मा में, आत्मा के बारे में दो चीज का निश्चय हुआ, सत्यम और ज्ञान। आत्मा के बारे में अभी तक के प्रसंगों से सत्यम ज्ञानम, नोदेति नास्तम एति, इसे क्या सिद्ध हुआ? सत्यम, आत्मा उत्पन्न नहीं होता और नष्ट नहीं होता है, इससे क्या सिद्ध हुआ? सत्यम। स्वयं प्रभा, इससे क्या सिद्ध हुआ? ज्ञानम। तो श्रुति में जो आपने आत्मा के बारे में बार बार सुना है, सत्यम ज्ञानम मनंतम ब्रह्मा सत्चित आनंद, ये जो आत्मा के बारे में सुना है, अब यहां तीसरी बात भी उसमें सिद्ध करना चाहते हैं। यह आत्मा परानंद, ये जो संबित रूप आत्मा है यही परम आनंद का विषय है, यही आनंद रूप है। आनंद भी कोई छोटे मोटे नहीं, परानंद परम आनंद का विषय है। तब आत्मा क्या है? परमानंद है, परम आनंद परमानंद। आनंद कह दिया तो हो गया, परम क्यों लगा दिया भाई? क्योंकि इसमें परम लगाने में हेतु है, पर प्रेमास्पद है, सबका प्रिय वस्तु यही है। प्रेमास्पद माने सबका प्रिय वस्तु, सबका प्रिय वस्तु और सबसे प्रिय वस्तु होने के कारण इसको क्या कहा? परमानंद। पर प्रेमास्पदम यथा, हेतु दिया है, क्योंकि मान भूवम ही भूयासम इति, मां न भूवम अपितु भूयासम इति, प्रेम आत्मनि, आत्मनि प्रेम इच्छते, सभी में ये देखने में आता है मैं अस्तित्वहीन हूं ऐसा कोई नहीं चाहता। मां न भूवम, मैं अस्तित्वहीन हूं ये कोई नहीं चाहता है। अभी तो क्या चाहता है? भूयासम, मेरा अस्तित्व बना रहे, मैं न हूं ये बात नहीं, मैं बना रहूं इति। इस तरह सभी में, सभी के भावना में ये देखने में आता है आत्मनि प्रेमम इच्छते, इच्छाराम सूर्यकांत भाई देसाई इन्होंने पंचदशी में गुजराती टीका लिखी है। मैं सबसे पहले खंबात गया था, पहले तो भावनगर जाता रहा, तो एक बार खंबात भी चला गया प्रवचन करने के लिए। वहां त्यागमूर्ति गणेशानंद जी के भक्तों ने, विशेष करके कन्हैयालाल पटेल प्रेम कुटीर में रहते थे, खंबात के त्यागमूर्ति गणेशानंद जी के शिष्य थे, वो भक्त थे, वो खंबात के ही थे, हीरे के व्यापारी, आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे। उन्होंने वहां एक आश्रम बनाया, स्वरूपानंद आश्रम, स्वरूप आश्रम। तो वहां गणेशानंद जी महाराज के और उनके ही आश्रम के एक संत परमात्मानंद जी, उनकी प्रेरणा से वहां नित्य स्वाध्याय चलता था। तो मुझे कहा गया कि वहां स्वाध्याय प्रवचन के लिए जाइए, तो हम गए। तो चतुर्भाई पटेल, तो वो उस समय थे, अच्छे वेदांती हैं, बहुत जिज्ञासु हैं, अभी तो बहुत वृद्ध हो गए, उनके बहू बेटे और उनकी पति मेरे साथ मानसरोवर गए थे, कैलाश मानसरोवर। तो उस समय पंचदशी स्वाध्याय वहां नियमित चल रहा था, तो हमने पंचदशी ही शुरू किया। तो उन्होंने वो पुस्तक लाकर दे दिया, आपको गुजराती आती है स्वामी जी? पूछा चतुर्भाई ने। मैं क्यों दू, मने आवड़े छे, गुजराती में बोलना पड़ेगा ना, तो मुझे आती है गुजराती, तो आप पढ़ पाओगे? बोले हाँ, तो एक पंचदशी ये पढ़ लीजिए। तो वो पंचदशी लाकर दिया मुझे, तो मैंने पढ़ा, तो उसमें इस श्लोक की व्याख्या में बड़ा सुंदर एक दृष्टांत दिया उन्होंने, मुझे स्मरण आ गया आज। वो दृष्टांत एक राजा और वजीर, प्रधानमंत्री राजा और मंत्री के बीच का संवाद को प्रस्तुत किया। ये जो नौवें श्लोक है उसके बारे में व्याख्या की है। और ये आठवां और नौवां श्लोक मिलता जुलता है। संवाद यह है कि सबसे दुनिया में सबसे प्रिय वस्तु क्या है। तो मंत्री ने कहा कि सबसे प्रिय तो व्यक्ति स्वयं है। पहले अपने से प्रेम करता है, तब दूसरों से करता है बाद में। तो इसका मतलब हुआ सबसे प्रिय वस्तु स्वयं है। मंत्री ने कहा कि नहीं नहीं, तुम गलत कह रहे हो। नहीं, राजा ने कहा तुम गलत कह रहे हो। हमने तो ऐसा देखा है संसार में, माताओं को माओं को सबसे प्रिय वस्तु तो अपना बच्चा है। राजा ने कहा हमने देखा। बोले कैसे, कोई उदाहरण दो। तो बोले कि देखो बंदर का, बिल्ली का। देखो बंदरी अपने अलावा बच्चों को ज्यादा प्रेम करती है। इतना प्रेम करती है बंदरी अपने बच्चों से कि वो अपनी परवाही किए बिना बच्चों से प्रेम करती है। बच्चों की रक्षा के लिए तो वो कुछ भी करने को तैयार है। बिल्ली को देख लो, ये तो सभी प्राणियों में ये देखने में आता है। गाय को देख लो, अपने छोटा बच्चा है। पक्षियों को देख लो, अपने छोटे बच्चे जो चूजे हैं, अपने छोटे छोटे जो चूजे हैं घोंसले में, स्वयं दूर दूर जाकर दाना चुन के लाती है। जीव कीड़े मकोड़े पकड़ के लाती है। अपने खुद भूखे ही भले रह जाए, लेकिन वो पहले बच्चे के मुख में डालती है। बच्चे न खाएं फेंक दें तो बाद में अपने खाती है, नहीं तो जब तक बच्चे खाते रहेंगे वो पक्षी, अपने मुख में होते हुए भी वो न खाकर मुख की चीज को भी फेंक देती है, बच्चे के मुख में डालती है। इस तरह देखने में आता है सबसे प्रिय तो बच्चे हैं माओ के लिए। इसलिए दुर्गा सप्तशती आप लोगों ने चंडी पढ़ा है कि नहीं है? दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, छादितम मोहात पिड्यन माना नपि क्षुधाम। पक्षी स्वयं अपने आप भूख से पीड़ित होते हुए भी अपने मुख से ही बमन करके अपने बच्चे को तृप्त करती है। हालांकि वहां ये संदर्भ मार्कंडेय ऋषि, वहां राजा सुरथ को समझाते हुए कहा पिड्यमाना नपि क्षुधाम, स्वयं भूख से पीड़ित है फिर भी वह अपने मुख के अपने पेट की चीज को भी निकालकर बच्चे के मुख में डालती है। कारण क्या है? तो बोले मोहात, बच्चे के प्रति का जो मोह है उसके चलते बच्चे मां ऐसे करती है, पक्षी ऐसा करती है। ये सारा संसार का नियम है राजन, ऐसा करके समझाया। लेकिन यह संदर्भ क्या है? राजा कह रहा है मंत्री से सबसे प्रिय बच्चे हैं। मंत्री ने कहा कि गलत है राजन, सबसे प्रिय तो स्वयं है। पहले अपना होना चाहते हैं, उसके बाद और होवें ये चाहते हैं।
स्वयं का अभाव सिद्ध करके दूसरे का भाव सिद्ध हो, ये कोई नहीं चाहता है। अन्यत्र का भाव सिद्ध हो, ये स्वयं के भाव सिद्ध करते हुए और का भी अस्तित्व रहे, ये सभी चाहते हैं। लेकिन स्वयं का अभाव सिद्ध करके दूसरे का भाव सिद्ध हो, ये कोई नहीं चाहता है। गलत, दोनों के बीच में विवाद हो गया। तुम्हें विश्वास नहीं है तो प्रयोग करके देख लो। तो वहां उन्होंने दृष्टांत दिया, मंत्री ने एक बावड़ी बना ली, कुआं बना ली और उसमें सुक्का, बंदर और बंदर के बच्चे को उसमें डाल दी, बंदरी एक छोटे बच्चे को लेकर उसमें डाल दिया बंदरी को। अब जब बाहर के मनुष्यों को देखा, इधर तो बंदरी ने बच्चे को छाती से चिपका रखा है, छोड़ती ही नहीं है बंदरी। राजा कहता है देखो कितना प्रेम करती है बंदरी अपने बच्चे से। बोले देखते जाओ। तो मंत्री ने उस कुएं में पानी भरना शुरू कर दिया। जब पानी भरना शुरू किया तो धीरे धीरे पानी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब बंदरी उछल कर बाहर जाना चाहती है, क्योंकि गहरा था, उछल कर जा तो सकती नहीं है। पहले वो बच्चा बंदरी के पेट में था, तो बंदर खड़ी थी, बंदरी खड़ी थी, तो पानी से सबसे पहले बच्चा डूबने लगा। पेट में था बच्चा, तो बच्चा जब चा चा करने लगा तो बंदरी ने उस बच्चे को फट से ऊपर पेट में ले लिया। बोले देखो बंदरी स्वयं डूब रही लेकिन बच्चे को डूबना नहीं देती, सबसे ज्यादा प्रिय बंदरी को अपने अलावा बच्चे का ख्याल है, राजा कह रहा है। बोले देखते जाओ। पानी भरते गए भरते गए, तो जब बंदरी स्वयं डूबने लगी, उसके मुख का पानी आ गया। अब बच्चा तो उसके पीठ में सुरक्षित है, बंदरी के मुख में पानी डूबने लगा, फिर भी पानी भरते जा रहे हैं। तो बंदरी ने अपने को बचाने के लिए आगे के दो हाथ दीवार में करके बंदरी खड़े हो गए। तो यहां तक पानी आ गया, मुख तो बच गया ना उसका। अब जब बंदरी खड़ी हो गई तो बच्चा डूबने लगा पीछे का, पीठ में जो बच्चा था वो डूबने लगा, बच्चा चें चें करने लग गया। उसने उस बच्चे को फिर सिर में ले लिया। किसने? राजा बोलता है देख मां खुद डूबे जा रही है, फिर भी उसको अपनी परवाह नहीं है, बच्चों को बचाने के लिए बच्चे को पीठ से भी सिर में ले लिया। देख मैं जो कह रहा हूं, सबसे प्रिय बच्चे होते हैं मां को, अपना जीवन उसको परवाह नहीं है। बोले देखते जाओ। जब पानी भरता गया तो जो बंदरी के मुख डूबने लगा तो बंदरी ने सिर के बच्चों को फेंक दिया। अपने सिर में रखे हुए बच्चे को फेंक दिया, तो बच्चा तो डूब गया नीचे। अब बंदरी भी डूबने लगी, तो देखते देखते क्या देखते हैं कि बंदरी बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई। बच्चा नीचे डूब गया पानी में, बच्चे के ऊपर खड़ी होकर अपने आप को बचाने की कोशिश करने लग गई। कौन? मंत्री ने कहा कि देखा हुई कौन कितना प्रिय है, आत्मा प्रिय है कि बच्चा प्रिय है, देख उसको अब बच्चे का कोई परवाह ही नहीं है, बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई, बच्चा डूब गया और अपने को बचाने के लिए वो कोशिश करने लग गए। देख लो अब बोले मैं मान लिया भाई, अब उसको बच्चे का परवाह नहीं, अपनी परवाह है, अपनी चिंता है, बच्चे की चिंता नहीं है। ये बात तो भागवत के प्रसंगों से भी बहुत बार आ चुका है। भागवत में चित्रकेतु का प्रसंग सुना है कि नहीं आप लोगों ने? हैं? हजार रानियां थी और हजार रानियों के बीच में एक बेटा पैदा हुआ, है ना? भागवत का प्रसंग सुना है ना चित्रकेतु का? अब जिस रानी ने वो बच्चा पैदा किया है, राजा उस रानी को, बच्चे को, सबको प्रेम करने लग गया। 999 जलने लग गई। अब भागवत तो सुनाइए तुम लोगों ने, और को तो वो फूटे आंख से देखता भी नहीं था राजा, बाद में तो बच्चा होने के बाद तो। तो एक दिन वो 999 मिलकर उसको जहर पिला दिया। किसको? बच्चे को मार दिया। अब मर गया तो सब विलाप करने लगे, छाती कूट कूट कर, पीट पीट कर रोने लग गए, हाय मर गया, हाय मर गया। सब बोलते थे इसके अलावा इसको छोड़कर हमको ले जाते, इसको छोड़कर हमको ले जाते। एक हजार के हजार रानियां यही शब्द बोल रही है, जिन्होंने मारा वो भी यही शब्द बोल रही है, जिसने पैदा किया था वो भी यही बोल रही है। इसके जगह मुझे ले जाता यमराज, राजा यही बोल रहा है इसके जगह मुझे ले जाता यमराज। बड़ा कोहराम मच गया। नारद जी घूमते हुए वहां पहुंचे, है ना? उन्होंने देखा क्या हाल है भाई, क्या हुआ? ये हुआ है, बड़ा दर्दनाक वातावरण था, सब लोग ऐसा कह रहे हो। अच्छा भाई, तुम लोग ऐसा कहते हो तो ठीक है, वही सही। मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा, उसके बदले एक व्यक्ति को जीवन देना पड़ेगा, उसको मैं जिंदा करूंगा, लेकिन उसके बच्चे बदले में एक को जीवन देना पड़ेगा। भाई प्रसंग यही है ना, हम भागवत में सुना है ना। पहले तो सबने कहा कि हां हां, तो नारद जी ने कहा पहले एक मर जाओ तब मैं उसको जिंदा करूं। आओ, कौन मरने को तैयार है उसके बदले? वो उसको देख रही है, वो उसको देख रही है, वो उसको देख रही है। पहले सभी कह रही थी उसके जगह हमको ले जाता है यमराज। नारद जी ने कहा कि पहले एक मरो तो मैं उसको जिंदा कर दूं। कोई भी तैयार नहीं हुआ, सब यही कहने लगे महाराज हम मरने के बाद उसको आप जिंदा कर दोगे तो हमें क्या फायदा होगा, है ना? हमारे मरने के बाद वो जिंदा होगा तो हमको क्या फायदा होगा? हम भी रहे, वो भी रहे, तुम ना फायदा है। पहले हमारे सामने उसको जिंदा कर दो, है? फिर देखा जाएगा महाराज कौन मरे कौन बचे। नारद जी ने कहा कि ठीक है भाई, वही सही, पहले उसको जिंदा कर देता हूं। बच्चे को जिंदा कर दिया, देख लिया सबों ने, सब खुशी हो गए। थोड़ी देर के बाद नारद ने कहा कि अब आगे आओ एक आदमी मरने के लिए, चलो। बोले नहीं महाराज, कोई भी आगे नहीं आता है, कोई भी नहीं आ रहा है, वो एक हजार भी नहीं आ रहा है, वो राजा भी आगे नहीं बढ़ रहा है। नहीं महाराज, जब आपने जिंदा कर ही दिया है तो हमको मरने की क्यों कहते हो महाराज? कोई दूसरा उपाय कर लो ना, कि हम भी रहे ये भी रहे, हमको मरने के लिए ना कहो। नारद जी ने कहा कि नहीं, अब इससे पूछ लो भाई ये मरा क्यों, कैसे मरा? सबके सामने उसने बोल दिया, नारद जी के सामने। ये जो 999 हैं उन्होंने जहर पिलाकर मारा है। तब सब सन राजा और वो जो रानी है बच्चे की मां, वो तो देखते रह गए। अभी अभी छाती कूट कूट कर रो रहे थे, उसके जगह हमको ले जाता है यमराज, ये अब क्या बात है? आखिर मारा था उन्होंने। तो नारद जी ने कहा कि कल बोल बेटा, अब क्या चाहता है? बोले महाराज, हम मर गए सो मर गए, वही ठीक है, इनके बीच में अब हमको रहना नहीं है। बोले ये लोग कोई तैयार नहीं हो रहा है, तो अब तू ही जा बेटा, फिर वापस चला जा। तो नारद जी के कहने से बच्चा फिर चला गया। ये भागवत का प्रसंग है। मतलब क्या सिद्ध हुआ? मान भूवम ही भूयासम, मैं न रहूं वो रहे, ये कोई भी नहीं चाहता है। संसार में सभी ये चाहते हैं कि मैं भी रहूं, मैं रहूं, मेरे साथ ये लोग भी रहें। लेकिन ये लोग रहें मैं ना रहूं कोई नहीं चाहता है। इसे क्या सिद्ध हुआ? प्रेमात्मनि इच्छते, आत्मा के प्रति ही सबका प्रेम है, ये दिखने में आया कि नहीं? उसको अन्वय व्यतिरिक युक्ति से विद्यारण्य मुनि जी समझा रहे हैं। आत्मा के प्रति व्यक्तियों का जो प्रेम है वो किस तरह है, परम क्यों है? पर प्रेम कहा ना, तो परम प्रेम क्यों है? खाली प्रेम न होकर परम प्रेम क्यों है? इस 9वें श्लोक से स्पष्ट कर रहे हैं। तत्प्रेमात्मार्थम अन्यत्र अन्यत्र यत् प्रेमम, गिरीश भाई, अन्यत्र यत् प्रेमम, और के प्रति किया जाने वाला जो प्रेम है ना, पति पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी पति से प्रेम करती है, मां बच्चों से प्रेम करती है, बच्चे अपनी मां से प्रेम करते हैं, बड़ा भाई छोटे भाई से प्रेम करता है, छोटा भाई बड़े भाई से प्रेम करता है, भोक्ता भोग्य वस्तु से प्रेम करता है। आप अपने कपड़े से प्रेम करते हो कि नहीं? करते हो ना? आप भोक्ता हो, कपड़ा भोग्य है। आप भोक्ता हो, आप गाड़ी भोग्य है, आप गाड़ी से प्रेम करते हो कि नहीं? आप ये अपने से अन्य प्रति जो प्रेम करते हो, अन्यों से जो प्रेम करते हो, वो प्रेम उसके लिए न होकर अपने लिए होता है। गाड़ी से प्रेम क्यों करते हो? गाड़ी के लिए करते हो कि अपने लिए करते हो? गाड़ी से कोई प्रेम करता है तो वो गाड़ी के लिए करता है कि अपने लिए करता है? घर से कोई प्रेम करता है तो वह घर के लिए करता है कि अपने लिए करता है? कपड़े से कोई प्रेम करता है तो कपड़े के लिए करता है कि अपने लिए करता है? आभूषणों से जो प्रेम करता है वो आभूषणों के लिए करता है कि अपने लिए करता है? अन्यत्र यत् प्रेमम तत् प्रेमम आत्मार्थम, वो अपने लिए करता है। समझे कि नहीं? और अपने लिए जो प्रेम करता है और के लिए करता है कि अपने लिए? और के प्रति प्रेम करता है वो अपने लिए करता है, अपने से प्रेम करता है वो भी अपने लिए करता है, तो डबल हुआ कि नहीं? ये देख लो, कटपट आदि से प्रेम करता है, क्यों? अपने लिए करता है, क्योंकि वो ये जानता है कि इसके द्वारा मैं सुखी रहूंगा, इसलिए उनसे प्रेम करता है। तो उनसे प्रेम करने का मुख्य लक्ष्य क्या है? आत्मसुख, मैं सुखी रहूं। तो उनका प्रेम का लक्ष्य क्या हुआ? मैं। और अपने से जो प्रेम करता, मैं अपने से प्रेम करता हूं ताकि ये सुखी रहे, ऐसा होता है कहीं? है? ऐसा नहीं। अपने से प्रेम करता है अपने ही लिए, और से प्रेम करता है वो भी अपने लिए, इससे क्या हुआ? परम प्रेम हुआ कि नहीं? तो ये आधार क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद की मैत्रेयी ब्राह्मण के अंतर्गत याज्ञवल्क और मैत्रेयी का प्रसंग के आधार से ये व्याख्या की गई है विद्यारण्य मुनि जी ने, है नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, नवारे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जा। कोई पत्नी से प्रेम करता है पत्नी के लिए नहीं अपने लिए, पति से प्रेम करती है तो पति के लिए नहीं अपने लिए, बच्चों से प्रेम करता है कोई तो बच्चे के लिए नहीं अपने लिए। सब मिलाकर अंत में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को कहा कि हे मैत्रेयी, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियं भवति अपितु आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियं भवति। सभी के लिए सभी से प्रेम नहीं करता है, अपने लिए सभी से प्रेम करता है, और अपने से जो प्रेम करता है वो सभी के लिए नहीं, वो अपने लिए करता है। देखो इससे क्या सिद्ध हुआ, आत्मा परम प्रेम का विषय है, अर्थात आत्मा आनंद स्वरूप है, ये बात सिद्ध हो गया। हो गया कि नहीं? तो आत्मा के बारे में नित्य सत ज्ञान स्वरूप चित, स्वयं प्रभ चित और आनंद स्वरूप, ज्ञान ही आत्मा है, और वह आत्मा सत चित आनंद रूप है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।